पञ्चाकल्पतरुदयस्य पितानां पावनं विष्णुभ्यो नमो महापतन्नाय कृष्णप्रेमाय कृष्णाय कृष्णचैतन्ये गौर हे कृष्ण दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्तन सप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विष्णुमान्ति प्रणमामि हा देवी काकु हरगदगदयाब्जवाचा जाचे निपत्तभोविदण्डवसाद हरदिके तव गणेश अङ्गश्यामलिमिच्छता विरभितो मन्देतुचण्डीवरं जट्टञ्जागुडरो च सङ्गविदधसङ्गपट्टम्बरस्य श्रियाशिमन्दिरसद्दामाभिरामो ध्यायन्ता भक्त्या विघ्नापराधलक्षिप्तास्यरङ्गमध्यै कृपामयीं त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे चरणाद् वैराग्यदिगुभक्तिरसं प्रयत्नय्यपां कृपां बुधिर्जा परदुःखदुःख सनातन स्थापितं येन स्वयंरूपा कदा मह्यं ददाति द्वैपायनो विरहकातरय पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयम् कुमार की तरफ उनको साधन करना है ना, साधन देन करना है। भगवान और गुरु अंतर्जामी होते हैं कि नहीं, हम साधन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। भगवान भी देखते हैं और गुरु भी। जब भी हम साधन नहीं कहेंगे और कहेंगे ये हम साधन कर रहे हैं, हाथेबाजी मार रहे हैं, तो भगवान क्या करेंगे है? भगवान क्या करेंगे बतलाओ?
जीरो
वो भी फांसी देंगे। ये जथा नाम जो फांसीबाजी मारेंगे भगवान भी उनके साथ में डबल फांसी बाजी मारे। साधक अवस्था में उठी सबसे पहले जब हम गुरु दीक्षा लेते हैं, उचित जो दक्षिणा नहीं देता उसका उसकी दीक्षा व्यक्त हो जाती है। कोई श्लोक ऐसा है पढ़ाए तुम लोग कि नहीं? दक्षिणा जो नहीं देगा दीक्षा के समय में उसकी दीक्षा कर। जो लौकिक पुरुष हैं लौकिक लौकिक रूप में दक्षिण, पारमार्थिक व्यक्ति पारमार्थिक कुछ दक्षिणा देगा, किंतु देना पड़ेगा सब। और दक्षिणा में यदि कोई फांसी दिया पहली स्थिति में ही फीस नहीं जमा किया और नाम लिखाने के लिए गया, अच्छा मैं दे रहा हूँ और नाम लिख लीजिए आप, मैं अभी ला रहा हूँ, और नहीं दिया तो समझ रहे हैं खूब, सब लोग समझो मैं क्या कह रहा हूँ। इधर दक्षिणा जरूर देना पड़ेगा, मैं तो दीक्षा ही नहीं, और देने के बाद ही भी यदि हम उनको फांसी देंगे तो फिर, इसलिए ये करो ये करो ऐसा नहीं, साधन ठीक ठीक है और मठ मंदिर का सब कुछ ही साधन है, इसलिए सोच विचार करके कोई चुपचाप मत बैठो। আগ্রহ কেউ চুপচাপ বসব না, সব সময় সেবা কাজে লাগবে, চাহে হরিনাম হোক আর চাহে মঠের অন্য কোনো সেবা, দেখো তো কিছু নাই বিশেষ সাধন ভজনের জন্য আমাদের সব সময়, কিন্তু তাতেও যদি ফাঁকি বাজি মারিয়ে নেওয়া, এই জন্য কেউ কেউ কিছু বলতে না হয় যে এই করো ওই করো, হ্যাঁ তো আমরা সব ব্যবস্থা ম্যানেজমেন্ট মধ্যে লেগে গেলাম, তাহলে তা এই জন্য সব দেখে শুনে সব সেবা কাজ করব, সাধন ভজন করব, আর দেখলা করতে নেব, প্রদর্শন করলে কি যোগ্য সাধন ভজন জিতনা কেউ ছিপা করকে করবে উতনাই উসকে দিয়ে। রোজ রোজ পাঠ করলে কি জরুরত
সুমিত্র ডাক্তার কেন স্যার সুমিত্রা ঋষি কুমার সুমিত্রা
এই সুমিত্র ডাক্তার এসেছে তো ডাক্তার করতে তাহলে যাই একটু দেখি আস তোমল বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তিকে যে সাধন ওলোক বদলায় জিসমে চতুর্ভুজ যে ভগবান কে পার্শ্বদ থেকে বদলা রে মন্যামহে কীর্তনমে এব সত্যম লোলাত্মকৈক স্বহৃদি স্ফুরত স্মৃতে বাচি স্বযুক্তে মনসি সুতৌ তথা দিব্য পুরাণ পদ উপকুর্বত আত্ম। জিতনে তাকে সাধন হ্যাঁ বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত করি, বৈকুণ্ঠ সে ইহা সমগ্র বৈকুণ্ঠ কো সমঝল আপ টু বৃন্দা সবকো সমঝ, তো সবকে লিয়ে এক জেনারল কহ রে সাধারণ রূপে বতা রে কি বহুত সে সাধন হ্যাঁ বৈকুণ্ঠ কে, জিসমে নৌধা ভক্তি পঞ্চধা ভক্তি চৌষট প্রকার কি ভক্তি ইত্যাদি হ্যাঁ जैसे वैकुंठ में जा सकते, इसमें भी तीन प्रधान श्रवण कीर्तन और स्मरण, इसमें भी कीर्तन और स्मरण दो प्रधान। स्मरण मैंने क्या, रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं जीवा के से अपने प्रिय भगवान के नामों का कीर्तन और मन के द्वारा स्मरण उन लीलाओं का, तो इसमें कुछ कुछ लोगों का विचार है और की तो बात छोड़ दो, और मैं तो ध्यान ऊंचा बतलाते ही हमारे संप्रदाय में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो रागानुगा भक्ति के लिए स्पेशली ध्यान को सर्वश्रेष्ठ बतलाते, अर्थात स्मरण हो अष्टकाली लीला स्मरण इत्यादि भगवान की लीला कथाओं का स्मरण इसको सबसे श्रेष्ठ बतला रहे, किंतु सनातन गोस्वामी जी यहाँ गोप कुमार और चतुर्भुज पार्षदों के माध्यम से ये बतला रहे हैं मन न महे, किंतु हम मैं कौन कार चतुर्भुज नारायण के पास पर और सनातन गोस्वामी यहाँ हम लोगों से पास संकीर्तनम एव सप्तमम, संकीर्तन ही सप्तमम तमम सप्तम यानी सबसे श्रेष्ठ संकीर्तन। क्यों? चित्त तो लोलात्मक है, मन चंचल है, स्थिर नहीं रहता। यदि कोई मन को स्थिर करके लीलाओं का स्मरण करे तो ठीक है, किंतु ये किसी भी स्थिति में ये मन शांत नहीं है, चंचल रहे। उसको केवल एक ही उपाय है। क्या उपाय है? यदि भगवान के नाम रूप पूर्ण लीलाओं का जोर जोर से एवं प्रतः स्वप्रिय नाम कृत्या जातां रागो चित्त उच्चै वृत चित्त उच्चै उच्चै रूप में भगवान का नाम रूप गुण लीलाओं का यदि कीर्तन किया जाए तो वह कीर्तन एक जिह्वा से निकलकर मस्तिष्क में पहुँच करके मन को और सारी इंद्रियों के क्रियाओं को स्तब्ध कर देता है। पृथक रूप में चंचल मन को किसी भी स्थिति में उसको दमन नहीं किया जा सकता, एकाग्र नहीं किया जा सकता। उस मन को एकाग्र करने के लिए भी जरूरत है तो कीर्तन। इसलिए विशेष करके कलयुग में महाप्रभु जी ने बतलाया, और कलयुग का युग धर्म है नाम संकीर्तन, हरे नाम हरे नाम ही वो केवल कलौ नास्ते व ध्यानम नास्ते व यज्ञ प्रत हम साध्याय संयम नास्ते, केवल हरिनाम संकीर्तन ही सबसे श्रेष्ठ। तो ये लोलात्मक मन को भी चंचल मन को भी स्थिर कौन करेगा? इसलिए संकीर्तन के अधीन यदि स्मरण हो तो वो ठीक है। इसलिए बाकी संयुक्त जीवन में ये नाम संकीर्तन उत्पन्न होकर के बाकी समस्त सारी इंद्रियों को और मन को भी अपने वशीभूत कर देता है। बिना सवार का घोड़ा लगाम नहीं है, घोड़ा और सवार नहीं है, तो घोड़ा क्या करेगा? जहाँ इच्छा तहाँ दौड़ेगा। ऐसे यदि मन रूपी घोड़े पर यदि कीर्तन रूपी सवार को चढ़ा दिया जाए और उसके हाथ में बागडोर पीर दिया जाए तो घोड़ा विपत्त में इधर उधर जाए, जहाँ चाहेगा वहाँ रुक। ठीक ऐसे, इसलिए उन लोगों का कहना वो चीज़ ठीक है ये बतला रहे हैं। ये कृष्ण भक्ति के लिए भी, ब्रज जाने के लिए भी यही, इसलिए उनके गुरु ने बतलाया श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण काशी यशोदा तनय प्रसिद्ध त्रिवल्लभी की। अच्छे, कोई एक आदमी नामात्मक कीर्तन न करके अष्टादश मंत्र का जप कर तो वैकुंठ जा सकता है कि नहीं, या गोलोक ब्रज में जा सकता है कि नहीं, जाएगा कि नहीं? तो क्या लोगों ने कहा है कि गोपियाँ जितने लोग महर्षि हुए थे ने? गोपाल मंत्र का जप करके ही गोपी का स्वरूप है। वो तो लिखा नहीं थे, ये 60,000 महर्षि जो थे रामलीला में देखा जाता है वो लोग गोपी मंत्र का ये गोपाल मंत्र का ही साथ। तो फिर ये गोपाल मंत्र कम है या काम गायत्री कम है, ये वैकुंठ में वहाँ नहीं पहुँचा देगा? तो गोप कुमार किया था, किंतु इन उदाहरण से ऐसा मालूम होता है कि ये भी कम नहीं है भाई। गोपाल मंत्र और काम गायत्री सिद्ध मंत्र हैं और इनके साधन करने से आदमी ब्रज को प्राप्त हो जाता है। कैसे इसका सामंजस्य किया जाएगा? इतना सहज नहीं जितना तुम समझ रहे, बहुत बड़ा भारी कठिन चीज है। ये भी देखना है कि वो सिद्धांत गड़बड़ न हो जाए, नाम संकीर्तन ही वहाँ पर पहुँचाएगा। और इधर भी लिखा है जैसे इस मंत्र का साधन करके बहुत से लोग गोलोक ब्रज में गए, कैसे इसका मीमांसा होगा? खूब सहज है, सिद्धि किया कहाँ, साधन किया कहाँ? इस होम जगत ब्रज में हो चाहे जहाँ भी, ब्रज में ही रह करके किया या दंडकारण्य में, उन लोगों ने किया गोपाल मंत्र से। इससे जिस मंत्र की सिद्धि हुई, संबंध ज्ञान उसका स्थाई भाव के रूप में परिणत हो गया। जिसका जैसा जैसा भाव है उसकी सिद्धि हुई, बस इस लोक तक ही वो सीमित रह गया, जाने के योग्य हो गया, समझिए। अब वो गोपी गर्भ से ब्रज में जहाँ पर के कृष्ण की प्रकट लीला चलता है वहाँ पर योग माया के प्रभाव से, और ब्रज में गोपियों के गर्भ से उत्पन्न होकर के चाहे वो सखा हो, चाहे माता पिता हो, और चाहे गोपी हो, जन्म लेना पड़ेगा और वहाँ का अभिमान होगा, और वहाँ पर मंत्र की फिर जरूरत नहीं है। वहाँ पर कीर्तन इत्यादि भगवान की लीला कथाओं का श्रवण और कीर्तन और गोपियों का संग या गोपालों का संग नित्य परिकर वालों का संग, और इसके बाद में तब फिर वो गोलोक बैकुंठ में जाएगा, ब्रज में जाएगा, ऐसे नहीं डायरेक्ट नहीं चला जाएगा। इसलिए इसका सामंजस्य, इसके द्वारा सिद्धि हो जाएगी, पहले स्वरूप सिद्धि और अंत में शरीर छूट जाएगा, वस्तु सिद्धि हो जाएगी, बस वहीं तक वो रह गया, यहीं तक मंत्र का काम है, साधन का, सिद्धि में उसकी कोई जरूरत नहीं। इसलिए इस मंत्र के द्वारा गोलोक ब्रज में गए, यह बात ठीक है, दरवाजे तक पहुंचा दिया, अब तुम भीतर जाओ और वहीं तक मंत्र का काम जो है आ रहा है, समझ में कुछ। इसलिए दोनों बातें, बिना गोपाल मंत्र के और काम गायत्री के कोई भी आदमी कोई साधन ही नहीं कर सकता, बल्कि नाम संकीर्तन भी करेगा उसका ठीक नहीं होगा, केवल नाम संकीर्तन से नहीं होगा, क्योंकि उस शुद्ध नाम नहीं निकल रहा है। इसलिए संबंध ज्ञान हो जाएगा, भावना एक आएगी मंत्र के द्वारा, हमारा क्या स्वरूप है वो गुप्त हो जाएगा, और इसके बाद में प्रबल रूप से हरिनाम संकीर्तन होने पर वो पूरा काम होगा। मान लें कि हमको घास छीलना है, तो किसी ने कहा कि सोने की खुरपी से घास छीलिए, सोने की खुरपी से घास छीली जाएगी? उसे नहीं, वो तो लोहे के इस्पात के खुरपी से ही घास छीली। ऐसे ही जहाँ जहाँ पर जिस अत्यंत बद्धावस्था में ये सब जरूरत है, अपने अपने स्थान पर सबकी जरूरत है, किंतु नाम संकीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ है, ये वो साधन में भी है सिद्धि में, मंत्र साधन में है सिद्धि में, कोई भी सिद्ध पुरुष इसको नहीं कर, क्या जरूरत नहीं, अब तो हो गया था। खूब अच्छी तरह से इस चीज को समझो, इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं संकीर्तन जो है बद्ध अवस्था में भी संकीर्तन की आवश्यकता है, किंतु उसके साथ साथ में गोपाल मंत्र और महाप्रभु के मंत्र इत्यादि जितने भी दिए गए हैं गुरु जी ने जो दिया है उसकी उपकारिता है, संबंध ज्ञान का और मन के धर्म से त्राण देने के, यही मन का धर्म है, विषयों में आसक्ति होना, विषयों से आसक्ति को ये देता है। कोई आदमी खूब अच्छी तरह से एक वर्ष भी करे, पाँच महीने करे, देखो जैसे उसका क्या प्रभाव जरूर हो विषयों से, जैसे हो गया उसको ब्राह्मण को, गोप कुमार को भी हो गया, ऐसे जरूर हो, और नहीं है तो कहीं गड़बड़ी है, कहीं बीज में गड़बड़ी है, अथवा कुछ पुष्ट बीज नहीं था, पुष्ट मंत्र नहीं दिया गया, देने वाला शुद्ध नहीं था, ये सब या हमारे करने में गड़बड़ी है, मन से हम नहीं कर रहे, फांकी मारते हैं, जय खो मन लगा करके श्रद्धा के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ, और कृष्णस्य नानाविध संकीर्तनेषु तन्नाम संकीर्तनम् एव मुख्यम् तत् प्रेम संपत् जननी स्वयं द्रात सक्तम तथा श्रेष्ठतम मतम से। ये दोनों याद करने के लिए आप लोगों के लिए आए। कौन कौन याद किया है? याद है कृष्ण के जितने भी प्रकार के नाम के कीर्तन हैं, उनके रूपों का, उनके गुणों का, उनके लीलाओं का, उनके परिकरों का, उन सब में सबसे पहले नानाविध कृष्णस्य कीर्तनेषु तन्नाम कीर्तनम् एव मुख्यम्। उनका नाम कीर्तन सबसे मुख्य है। यदि मैंने कहा जरा इधर आ जाओ, कौन आएगा? मैंने कहा जरा इधर आ जाना तो आएगा कोई? ये बड़े गुणी आदमी है, बड़े सुंदर है, इनमें बहुत से गुण हैं, इसलिए वो आ गए। कौन आएगा? और यदि कुछ भी ना कहें और जब बांकेलाल जरा इधर आना, तो ऐसे ही भगवान का नाम रूप गुण लीला इत्यादि जितने प्रकार के कीर्तन है, उसमें भगवान को बुलाने के लिए, भगवान को स्मरण करने के लिए भगवान का नाम संकीर्तन ही, उसके साथ में नाम संकीर्तन के साथ में रूप गुण लीला इत्यादि का कीर्तन हो तो और इस तरह से हे गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन नमात्मक होना चाहिए। उसमें भी श्रेष्ठ जो नाम है कृष्ण परम, गोपियों के साथ संबंधित, वो नाम सबसे श्रेष्ठ है। तत् प्रेम संपत् जननी स्वयं द्रा, यदि कृष्ण के चरणों में ब्रज में प्रेम को जल्दी से जल्दी कोई चाहता हो तो संकीर्तन ही, नाम संकीर्तन ही सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिमान है। सप्तम तथा श्रेष्ठतम, इसलिए मेरे विचार से नाम संकीर्तन सबसे श्रेष्ठ है। प्रेम पुष्पम भाव के सही नाम संकीर्तनम पूर्वोक्तम कृष्णस्य प्रेम संपत्ति बलिष्ठ साधनम श्रेष्ठम परम आकर्षम मंत्रवत्। ये जो नाम संकीर्तन पूर्वोक्तम कृष्णस्य, ऐसा कहा गया है सर्वत्र शास्त्रों में कि प्रेम संपत्ति को लाभ करने के लिए सबसे बलिष्ठ साधन, इसलिए मेरे विचार से नाम संकीर्तन अब कीजिए। और तब उपदेश दिया वो कीर्तन करने के लिए श्री कृष्ण गोपाल, इस नाम को जब वो त्रिलोक में आए तो उनके गुरु जी ने वो नाम दिया। दीजिए, यहाँ पर एक शंका हो सकती है कि सनातन गोस्वामी तो चैतन्य महाप्रभु के समसामयिक हैं और उसी समय में महामंत्र का प्रचार चल रहा था। महाप्रभु नवद्वीप से आरंभ किया महामंत्र, जगन्नाथपुरी में भी महामंत्र चलता था, उसके बाद भी चलता था, तो सनातन गोस्वामी ने उसका कहीं भी ग्रंथ में जिक्र नहीं किया, महामंत्र के संबंध में नहीं लिखा। और बृहद्भवतामृत में ये नाम के लिए भी यदि कहा तो श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हरे, तो क्या उनको पता नहीं था महामंत्र का? मालूम नहीं था उनको? और चैतन्य महाप्रभु यही कह रहे, क्या कारण है कि इस मंत्र को नहीं? युग धर्म में तो उसमें भी नाम संकीर्तन युग धर्म है, कोई स्पेशल के लिए कहा गया न? क्या कलि संतान उपनिषद इत्यादि के द्वारा ऐसा प्रतीत होता है? सब साधारण जनों के लिए महामंत्र ही सबसे प्रकार, महामंत्र सब अवस्थाओं में दिया जा सकता है। यहाँ पर सनातन गोस्वामी विशेष रूप में कुछ कह रहे हैं, उसमें थोड़ा सा अर्थ निकालना पड़ता है। हरे कृष्ण कृष्ण परक और राधा परक लाने के लिए, और इसमें कोई बाहर से कोई अर्थ लगाना नहीं पड़ता। सहज रूप में राधा कृष्ण, राधा बल्लभ, राधा कांत इत्यादि का उल्लेख है, यशोदानंदन इत्यादि का उल्लेख है, इसलिए प्रकृति के लिए ऐसा कहा। किंतु हम समझते हैं यदि कोई महाप्रभु के किए हुए या रघुनाथ दास गोस्वामी के किए हुए अर्थ को यदि कोई जानेगा तो निश्चित रूप में ये नाम नहीं करेगा श्री कृष्ण गोपाल हरि, वो क्या करेगा? क्यों करेगा? बड़ा विप्रलंभात्मक और सरस और ब्रज भाव से परिपूर्ण है, साधारण रूप में ये नहीं दिखता है। जैसे बीज में कोई पेड़ नहीं दिखता, कोई पौधा नहीं दिखता, किंतु उसमें है। और यदि कोई पारखी व्यक्ति है तो देखेगा क्या? इसमें तो ऐसा चीज है जो उस चीज में नहीं है, कुछ देख लेगा। जैसे दो गहिया हैं, दो हड़ियों, दोनों दही एक समान ही है, एक मीठी भी एक में मीठा दे करके मीठा भी कर दिया गया और एक में नहीं किया गया। एक पारखी ने दोनों दही को एकत्र करके उसको देख करके जो मीठी थी और सफेद थी या लाल थी उसको रिजेक्ट कर दिया, और जो उतनी मीठी नहीं थी उसको कहा जी ये अच्छी है, ये 10 रुपया किलो होने चाहिए, और जो मीठी है और देखने में रंगीन है उसका जी 1 रुपया किलो होना चाहिए। क्यों? वो सरपेटा उसमें से घी निकाल लिया गया है और तब उसको दही जमाया है और उसमें चीनी और कुछ सुगंधित चीज आर्टिफिशियल दे करके उसे बना दिया है, और उसमें कुछ भी नहीं है, केवल दही वो साधारण रूप में, उसमें प्रत्येक अणु अणु में भी घी है, इसलिए वो। इसी तरह से इस नाम में हमारे गोस्वामियों ने इसका इतने प्रकार से 16 नाम है, 16 प्रकार से इसका अर्थ निकाल करके और स्वादन किया। जैसे हरे कृष्ण, और तो सब आप लोग आते जाए, हरे माने यहाँ हरति कुंजे कृष्ण जा सारा था, जो कुंज में कृष्ण को आकर्षण करती हैं और सेवा करती हैं प्रेम भाव से, वो है। तो बतलाओ तो ये इसमें कहाँ है? और सब संबोधनात्मक सब राम कुंजे हरण करने के बाद में जब कृष्णम रमयति, अब कृष्ण को भी रमण कराती हैं, आनंद देती हैं, सेवा करती हैं, वो हरे वहाँ राम के साथ। यदि कोई सद्गुरु से रसिक वैष्णव से इन सब का अच्छी तरह से अर्थ समझ करके और भावपूर्ण भाव से कोई महामंत्र करता है ना, तब उसका ये यथार्थ स्वरूप कुछ कुछ, तब इसको समझेगा जे नहीं टेढ़े रूप में उसको नहीं दिया गया, अर्थ के द्वारा राधा कृष्ण जी हैं यथार्थ। इसलिए सनातन गोस्वामी ने यहाँ पर किसी कारण से महामंत्र को नहीं लिया, इस मंत्र को दिया है, मंत्र नहीं मैंने ये नाम, कोई भी जरूर इसमें कुछ होगा, नहीं तो कलयुगी जीवों के लिए शास्त्रों के अनुसार में ये महामंत्र ही सबके लिए करनी और की। 6 बजे है तो आज यहीं तक रहे, कल से फिर हम लोग विषय प्रसंग में आएंगे, जहाँ पर हम चल रहे थे नारद जी से और गोप कुमार से वार्ता, उनको बैकुंठ में क्यों विरक्ति हो गई, इसके बाद में राम ने क्यों विरक्ति हो, और उसमें तत्वों का निरूपण है, उसको ऐसा मत समझ लेना जैसे हमारे लिए उपयोगी नहीं है, ये सब को जानना भी आवश्यक है, और नहीं तो शुद्ध प्रेम ब्रज का प्रेम ये नहीं, इसलिए इसको खूब सावधानी के साथ हम लोग सुने और चलें और
नमो महापतन्नाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते लोकेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते कांचन गौरांगे राधे बिंदा प्रणमामि हा देवी काकु भरगदगदयाद्वाचति जाते निपत्तभोरिभटारति अस्य प्रसादमबुदस्य जनस्य कृत्वा हरिकेतवगणेन मन्दे जट्टिजागुतरोचसमुदतसमपट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि न सद्धामाभिरामोदरं राधास्वन्दिनापराधिताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि ृपांगुदिज पर दुख दुखे सनातन स्तम प्रभुमाश्रयामि श्रीचैतन्य मनोभीष्ट स्थापित प्रजंतमनुपेतमपेतमुपेति तन्मयतया कर्वोऽभिने
संक्रांति संक्रांति मैंने क्या संक्रांति किसको कहते हैं पंडित जी
क्रांति
मैंने विद्रोह
नहीं क्रांति मैंने
पैर से चलना सम्यक रूप से चलने को संक्रांति धीरे धीरे ना जल्दी जल्दी
धीरे प्रभु
तो हम लोग तो सब समय संक्रांति में
पारिवारिक संक्रांति हो सकती है जागतिक संक्रांति हो सकती है
एक अष्ट तीर्थ वो कहीं जा रहे थे ने? एक आदमी ने कहा कि महाराज जी पंडित जी आप इधर से मत जाइए तो क्या है इधर में बाघ एक है तो वो व्याघ्र आदमी को खा जाता है आप मत जाइए तो उन्होंने पहले उसकी व्युत्पत्ति जिख धातु से ये व्याख्र धातु ये बना है शब्द जिघ्र मैंने होता है सुनना वो तो खा नहीं सकता है तो वो सूंघ लेगा अधिक से अधिक ध्यान वो करेगा पर कुछ डर की बात नहीं है वो अधिक से अधिक तो होता सूंघ ले सकता है बात होता है तो वो चला गया तो जब गया तक बन में तो सब कुछ त्याग और एकदम गर्जन करके ऊपर टूट पड़ा उनका जी ठीक ही भरा था खादती अर्थ में भी कभी कभी पंडित जी को उसमें याद नहीं आया किंतु जिसमें वो बाद में आकर कर दिया है तब तक उनको खा चुका था तो संक्रांति मैंने हमारे यहाँ 12 राशियां हैं उन 12 राशियों में वर्ष में सूर्य उनको अतिक्रम करता है जब से उनको वो जरूर पार करता है मेष वृष कुंभ
सब
ये सब राशियां हैं उन राशियों पर जब सूर्य आते हैं तो उसी के अनुसार में ऋतुएं सर्दी जाड़ा गर्मी ये सब षड ऋतुएं सब उसी के अनुसार में हैं जिसमें से मकर राशि कुंभ राशि मेष वृष इत्यादि ये प्रसिद्ध हैं तो जब सूर्य एक राशि को चल करके फिर दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो इसको कहते हैं सम्यक रूप से अतिक्रांति जब एक को छोड़ करके दूसरे पर प्रवेश करता है तो उसको कहते हैं आज के दिन में सूर्य सबसे दक्षिण दिशा में वो था अभी तक दक्षिणायन चल रहे थे सूर्य और अपने लास्ट बिंदु मकर रेखा कहते हैं उसको मकर रेखा को तब तक पहुँचे और अब उसको पार करके किधर आ रहे हैं लास्ट बिंदु तक चले गए थे दक्षिण दिशा में और उसे अब पार करके इधर में आ रहे हैं आज के दिन में पार 23 या 24 तारीख को बड़ा दिन था 25 दिसंबर उस दिन से उस दिन उसको पार करके गए थे उधर में थे आज के दिन उसको पार कर चुके उत्तरायण में अब उसको कहते हैं उत्तरायण अब ये उत्तरायण कब तक रहेगा देख उत्थान एकादशी है हाँ तो उस समय कौन रेखा पर हुआ है उसको जब पार कर लेंगे तो फिर वो दक्षिणायन में कर्कट राशि वो कर्कट राशि में गए तब फिर वो दक्षिणायन अभी इसी में भीष्म पितामह जी इसी के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे जहाँ मकर संक्रांति में पार होकर के सूर्य उत्तरायण में आए तब उन्हें सही कुछ साधन इत्यादि के लिए करुण मार्ग साधन योगियों के साधन में उत्तरायण और दक्षिणायन का बहुत ही महत्व होता है दक्षिणायन में यदि प्राण निकले तो उसकी गति कुछ दूसरी होती है उत्तरायण में होने से उसकी गति क्यों अब सूर्य निकट आ रहे हैं इसलिए सूर्य की करणों के साथ में उनकी आत्मा मिल करके कुछ लोग में जाती है तो आज के दिन में सूर्य मकर राशि को पार कर किए हैं इसलिए इसको मकर संक्रांति कहते हैं आज के दिन में तिल का दान सर्वोत्तम माना और तिल खाना क्यों जो ब्राह्मण गरीब हैं किंतु देश के लिए उपकार का कार्य करते हैं परोपकार करते हैं आत्मतत्व में चिंतन में लगे रहते हैं जो खेती बाड़ी नहीं करते धन संग्रह नहीं करते उनको तिल खिलाओ ठाकुर जी के लिए वैष्णव के लिए तिल का और स्वयं भी तिल खाना चाहिए क्यों इसके अंदर में तेल होता है जो शरीर को स्निग्ध रखता है इसलिए ऐसी चीज़ों को दान किया जाए और ऐसी चीज़ें व्यवहार किया जाए तो शरीर स्निग्ध रहता है नहीं तो जाड़े से शरीर में बहुत सी ऐसी चीज़ों का अभाव हो जाता है जिस पर शरीर रुखड़ा हो जाता है, खुजली हो जाएगी, चमड़े कुछ ऐसे हो जाएंगे। तो इसलिए इस सब को देख करके ही हमारे पर्व त्यौहार और ये सब चीज़ें, इसमें लोग स्नान नहीं करते, जाड़ों में बहुत से लोग आलसी हैं, तो नियम बनाया गया ये इस दिन में जरूर स्नान करना होगा और डूब करके स्नान गंगा में, यमुना में, समुद्र में होगा। आपका सबसे स्नान करने का महात्मा सबसे अधिक कहाँ का है?
गंगा सागर।
आज लोग गए होंगे गंगा सागर में, कर्मी लोग जितने
जो
पुण्य फल चाहते हैं वो सब गंगा सागर में सबको कंबल बांटेंगे, कपड़े बांटेंगे, खाने का द्रव्य खिचड़ी इत्यादि सब वंचन करें, कुछ उपकार नहीं होना चाहिए। कर्मी ऐसा नहीं जो अपने लिए सब करें, कुछ दान भी होना चाहिए। ये वो ब्राह्मण गोवर्धन वाला इसी मकर संक्रांति पर गया था गंगा सागर। तो कहते हैं कि गंगा सागर एक बार और फिर बार बार एक बार जब ये स्नान कर ले तो जब टेस्ट है। क्यों? एक बार यदि कर लेगा तो उसका मन नहीं होगा जब फिर कभी जाए, लौट के नहीं जाएगा, कर्म मार्ग जाएगा। वहाँ पर माने कि जैसे 50-60 हजार या 2-4-10 लाख आदमी आते हैं और छोटा सा टापू होता है, लोगों को टट्टी लगेगी, पेशाब लगेगा, कहाँ जाएंगे? वो किनारे किनारे पानी का के पास में करेंगे और जब ज्वार भाटा आएगा सबको बाहर करके ले जाएगा और उसी में लोग स्नान करेंगे। तो इसलिए पुण्य ऐसा एक चीज है, पुण्य का एक बार फल भोग कर लिया स्वर्ग में तो चेतम भुक्वा कर्तलोकम विशालम सीने पुण्य मर्तलोकम विषम। वहाँ जाएंगे ना तो वहाँ पर क्या है स्वर्ग में, वो गंगा सागर का फल है। काम क्रोध लोभ मद मोह मांस सब ये सब कुछ बढ़ जाएगा, कंडा कंडी का ज्ञान नहीं रहता। जैसे बृहस्पति चंद्र इंद्र इनको किसी चीज का ज्ञान नहीं रहता, जैसे कोई शराब पी करके मतवाला हो जाता है ऐसे कर्म मर्ग का फल सोमरस पान करते हैं क्या होता है, काम क्रोध लोभ मद मोह मांस सब ये सब एकदम बढ़ जाता है। बढ़ करके उन लोगों को बुद्धि काम नहीं करती तो गर्भित काम भी वो कर लो और फिर वहाँ से नीचे गुरु हाथ पड़ते हैं इस जगत। इसलिए यदि दान ही करना है तो जो सचमुच में संत हैं उनको कुछ लोग तो वो कर्म मार्ग को वो जला देंगे, उसका फल भगवान के प्रेम में लगा देंगे। यदि कुछ लेना भी तस्मै देयम ततो ग्राह्यम सचो पूज्यो यथा ही अहम, जैसे मैं पूज्य हूँ ऐसे ही वैष्णवों को अपना समझ करके उन्हीं को लो और जो कुछ देते हैं तो वो ले, तो वो कर्म मार्ग उसका कुछ नहीं कर सकेगा। इसलिए गंगा सागर में भी भीड़ लगी हुई होगी और इलाहाबाद प्रयाग में भी गंगा जमुना और सरस्वती की धारा वहाँ पर मिली है, आज वहाँ पर भी बड़ी भीड़ होगी। पहले भीड़ होती थी एकांतिक हरि कथा श्रवण और कीर्तन के लिए, आज कुछ उसमें राजनीतिक कंटे भी उसमें लग गए, कुछ गड़बड़ियाँ चलती हैं क्योंकि साधु लोग भी अब कम हैं। अब विशेष करके शुद्ध जो संत लोग हैं वो बहुत कम जाएंगे उधर, न तो जाएंगे महासागर में, सागर स्नान में भी नहीं जाएंगे और यहाँ पर भी नहीं जाएंगे। वह लोग शुद्ध रूप में वृंदावन जाएंगे, यमुना जी में स्नान करेंगे, उनको यहीं से ही सब कुछ फल मिल जाएंगे। और कुछ वो फल चाहते नहीं, वो तो प्रेमी एकमात्र फल चाहते हैं। इसलिए हम लोग यहीं पर आते हुए गंगा जी को स्मरण करें, यमुना जी को स्मरण करें और शुद्ध प्रेम फल भक्ति प्रेम संक्रांति का यदि है फल तो ये आजकल दान का भी महत्व है, तो तुम लोग भी दान मत लेना है। यदि कोई दान के हिसाब से भी देता है तो ठाकुर जी के चरण में अर्पित करता है। यदि उसका एक चावल का दाना भी तुम लोगों ने ले लिया है तो फिर जन्म जन्मांतर गड़बड़ हो जाएगा, भक्ति में बाधा आ जाएगी। इसलिए खूब सावधानी के साथ इन चीज़ों से अलग रहना, न दान लेना और न दान देना। आप लोग भी दान मत देंगे और दान मत लेंगे, कोई भी चीज़ दान मत दीजिए। यदि है तो सेवा वृत्ति से उसे भगवान का प्रसाद समझ करके उसे कुछ दीजिए। ये जितने जीव हैं जगत के, ये भगवान के प्रिय हैं, उनको हम सेवा, बस ये भाव अब उनकी, उनको देने से भगवान। और उठा करके ऐसे दे दे, किसको दिया ये मुख नहीं देखते थे। तो एक दिन कोई ब्राह्मण आया, ये दान दे रहे थे,